നമോയോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനേ നമസ്തേ ശാശ്വത ദേവേ ഗൗരവാണീ പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദീ പാശ്ചാദ്യദേശതാരിണേ ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം ജേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഃ കദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേ അനന്താദ്ഭുതയൈശ്വരജം ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭും നീചോയപി ജത് പ്രസാദാത് സാധുഭക്തിശാസ്ത്ര പ്രവർത്തകഃ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതെ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവീ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ഛാകൽപതരുഭ്യഃ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാശാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭവാൻ യുഗ അന്ത അരണവേ ഊർമി മാലിനി ക്ഷോണിം ഇമാം ഓഷധി ബിരുദാം നിധിം മയാ സഹ ഉരു ക്രമത്തെ അജ ഓജസ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണ ആത്മനെ നമഃ ഇതി ഭവാൻ യുഗാന്തരണവ ഊർമി മാലിനി ക്ഷോണിമി മാമോഷധി ബിരുദാം നിധിം മയാ സഹോരു ക്രമതേ ജോജസ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനെ നമഃ ഇതി ഭവാന് യുഗാന്തരണവ ഊർമി മാലിനി ക്ഷോണിമി മാമോഷധി ബിരുദാം നിധിം മയാ സഹോരു ക്രമതേ ജോജസ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനെ നമഃ ഇതി ഭവാൻ യുഗാന്തരണവ ഊർമി മാലിനി ക്ഷോണിമി മാമോഷധി ബിരുദാം നിധിം മയാ സഹോരു ക്രമതേ ജോജസ തസ്മൈ तस्मै जगत प्राण गणात्मने नमः इति। हरे कृष्णा। माता जी, भगवान आप युग अंत अरणवे प्रलय कालीन सागर में उर्मि मालिनी उताल तरंगों के स्वामी, छोड़ीम पृथ्वी को इमाम ईश औषधि विरुधाम समस्त प्रकार की औषधियों एवं लताओं को, निधिम आगार संग्रह मया मेरे सह साथ उरु महान क्रमते आप भ्रमण करते रहे। अज हे अजन्मा ओजसा गतिपूर्वक तस्मै उसको जगत संपूर्ण ब्रह्मांड का प्राण गण आत्मने जीवन का परम स्रोत नमः नमस्कार है इति इस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान, कल्पांत में यह पृथ्वी जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों के आगार है, जल की बाढ़ से प्रलयकारी तरंगों के नीचे डूब गई थी। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। हे अजन्मा, आप इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता है, इसलिए आप ही सभी जीवात्माओं के कारण स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, ईर्ष्यालु व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर कितने आश्चर्यजनक ढंग से इस ब्रह्मांड की सृष्टि पालन और फिर उसका संहार करते हैं, किंतु ईश्वर के भक्तगण इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे यह देख पाने में समर्थ होते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के पीछे ईश्वर का कैसा हाथ है। भगवद्गीता 9:10 में श्री कृष्ण कहते हैं,
मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह अपरा प्रकृति माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इस कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। प्रकृति के समस्त विस्मयकारी परिवर्तन श्री भगवान के निरीक्षण में घटित होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति इसे नहीं देख पाते, किंतु जो भगवान के भक्त हैं वे अशिक्षित होकर भी प्रकृति के इन क्रियाओं के पीछे भगवान के हाथ को देखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि तात्पर्य बहुत छोटा है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं। यह प्रसंग श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के जम्बूद्वीप वर्णन के क्रम में है। यहाँ रम्यक वर्ष का वर्णन हो रहा है। आप श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध में राजर्षि भरत के चरित्र के साथ भूगोल का वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं। बहुत से लोग जो सावधानी पूर्वक भागवत नहीं पढ़ते, उनको यह प्रश्न बना ही रहता है कि भागवत में भूगोल के वर्णन की क्या आवश्यकता है। प्रायः लोग नहीं समझ पाते, और जो बाहर के तथा कथित कथाकार हैं वे इस प्रसंग को छूते ही नहीं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि इस भूगोल के वर्णन का क्या तात्पर्य है। खास करके भागवतम के तीन प्रसंग को वो बिल्कुल नहीं छूना चाहते। कारण यह है कि वो समझ ही नहीं पाते। दूसरा स्कंध, पांचवा स्कंध का भूगोल और एकादश स्कंध का उद्धव और कृष्ण के बीच का संवाद, तात्विक प्रवचन नहीं समझ पाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। यह हमारे पूर्व आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी इत्यादि स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ पंचम स्कंद में भूगोल के वर्णन का तात्पर्य है कि श्री भगवान हरि सर्वाराध्य हैं, सबके द्वारा आराध्य है। एक साधारण व्यक्ति से लेकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े प्रजापालक लोकाध्यक्षों के द्वारा श्री भगवान आराध्य है। और इस भूमंडल के वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी यह बतलाना चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने लोक लोकांतर हैं, द्वीप हैं, वर्ष हैं, सब में भगवान एक समान आराध्य है। यद्यपि उनका श्री विग्रह भिन्न भिन्न होता है, आराधकों की रुचि के अनुसार भगवान के श्री विग्रह हैं, रूप हैं, लेकिन आराधना सभी लोग करते हैं। तो भारतवर्ष के वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। जब जड़ भरत का प्रकरण समाप्त हुआ, राजर्षि भरत के वंशावली का वर्णन थोड़ा सा किए, इसके बाद फिर भूमंडल का वर्णन करते हैं। भूमंडल मतलब संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह भूमंडल कमल के सदृश है, कमल कोश की तरह, और जम्बूद्वीप इस कमल कोश के मध्य में स्थित है। सात पंखुड़ियों वाले अलग अलग द्वीप हैं, जैसे कमल के सात पंखुड़ी हो, तो अलग अलग द्वीपों का वर्णन करते हैं और जम्बू द्वीप को कहते हैं मध्य में है। और इसके बीच में एक सुमेरु पर्वत है जो बहुत ऊंचा है, 84,000 योजन ऊंचा है। और इसी जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 वर्ष हैं अलग अलग बटा हुआ। तो इन वर्षों के अध्यक्ष अपने परिकरों के साथ श्री भगवान की आराधना करते हैं। तो तो जम्बू द्वीप का वर्णन करते हुए उसके पहले ही जब स्वयंभू मनु के वंशावली का वर्णन करते हैं पांचवें स्कंद के प्रारंभ में, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वयंभू मनु के पांच संतान थे, दो पुत्र और तीन पुत्रियां, जिसमें महाराज प्रियव्रत, उतानपाद और पुत्रियों में आकुति, देहूति और प्रसूति। तो स्वयंभू मनु के इस पांच संतानों का वर्णन पहले के स्कंदों में कर चुके हैं। इस तीसरे स्कंद के अंत में देहूति के वंशावली का वर्णन करते हैं, चौथा स्कंद में आकुति और प्रसूति, और साथ ही उतानपाद महाराज के चरित्र का वर्णन करते हैं। अब एक फर्स्ट संतान, प्रथम संतान को अंत में वर्णन करते हैं, प्रियव्रत को, जो स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र थे। तो स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंशावली का वर्णन महाराज परीक्षित के एक जिज्ञासा से प्रारंभ करते हैं। कथा के क्रम में सुखदेव गोस्वामी कह दिए कि महाराज प्रियव्रत प्रारंभ में परम विरक्त से सन्यासी थे। देवर्षि नारद के उपदेश से ये निवृत्ति मार्ग के पथिक हो गए थे, लेकिन पुनः ब्रह्मा जी के समझाने पर इन्होंने गृहस्थी स्वीकार किया। और एक ही श्लोक में कहते हैं, लेकिन उस गृहस्थी के बंधन में पड़े नहीं, पुनः विरक्त हो गए। तो महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं पंचम स्कंद के प्रारंभ में कि एक तो निवृत्ति को स्वीकार करना बहुत कठिन काम है, फिर भी महाराज प्रियव्रत संयोग से देवर्षि नारद की कृपा से वह मार्ग स्वीकार कर लिए, फिर उन्होंने बंधन में डालने वाले घर गृहस्थी को क्यों स्वीकार किया, और स्वीकार भी किए तो इतनी आसानी से कैसे निकल गए। तो यहां से महाराज प्रियव्रत के विषय में कथा प्रारंभ होती है पंचम स्कंद में। तो कथा तो विस्तार से है, प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी के समझाने पर स्वीकार किए, जबकि मनु महाराज थक गए समझाकर, चाहते थे कि प्रियव्रत जिम्मेवारी ले तो मैं संन्यास लूं, घर छोड़कर भजन करूं, लेकिन नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी आकर समझाए, बहुत सुंदर उपदेश है ब्रह्मा जी का। तो प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थी स्वीकार किया और प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए अग्निध्र। अग्निध्र यद्यपि बहुत भजन परायण नहीं थे और न बहुत राजनीतिक दक्ष थे, बड़े एकांतिक व्यक्ति थे, लेकिन पिता के आज्ञा से उन्होंने जब तपस्या किया सृष्टि कार्य की क्षमता प्राप्त करने के लिए, तो उनके तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने स्वर्गीय एक अप्सरा पुरुचिति को भेजा, लेकिन स्त्रियों को मनाने में, उनको खुश करने में अग्निध्र बहुत दक्ष थे, इसलिए उन्होंने अपने वाक चातुरी से पूर्वचिति को वश में किया और पूर्वचिति के गर्भ से नौ संतान प्राप्त किए। उन्हीं नौ पुत्रों को संपूर्ण भूमंडल को उनके नाम से रजिस्ट्री करके विरक्त हो गए। तो उन्हीं नौ पुत्रों के नाम पर जम्बू द्वीप का नौ विभाजन हुआ है, जिसको वर्ष कहा गया। तो उनके पुत्र हैं नाभि, किम पुरुष, हरि, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल। लेकिन इस नौ वर्ष में भारतवर्ष का नाम नहीं आया, इन्हीं लोगों के नाम पर किम पुरुष वर्ष, हरि वर्ष, इलावृत वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, पुरु वर्ष, भद्राश वर्ष और केतुमाल वर्ष। तो इनके साथ नाभि प्रथम पुत्र थे, तो नाभि के नाम से वर्ष प्रसिद्ध नहीं हुआ। नाभि के पुत्र हुए अजन्मा भगवान ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र हुए राजर्षि भरत। सौ पुत्रों में सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। तो जब नाभि महाराज के पुत्र ऋषभ हुए तो उस देश का नाम हुआ अजनाभ वर्ष, अज मन अजन्मा और नाभ मन नाभि, अजनाभ पिता और पुत्र के नाम से देश का नाम वर्ष का नाम हुआ अजनाभ वर्ष। लेकिन भगवान ऋषभ के पुत्र जब राजर्षि भरत सुप्रसिद्ध राजा हुए तो यह देश यह क्षेत्र उनके नाम से प्रसिद्ध हो गया, इसलिए नाभि वर्ष न कह करके भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो भारत वर्ष, हरि वर्ष, किम पुरुष वर्ष, इलावृत वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, कुरु वर्ष, भद्रास वर्ष और केतुमाल वर्ष, ये 9 वर्ष हैं। तो सुखदेव गोस्वामी एक विशिष्ट बात कहते हैं इन वर्षों के वर्णन के क्रम में, कहते हैं परीक्षित इन 9 वर्ष में भारत वर्ष कर्म भूमि है, जहां व्यक्ति के कर्म का रिजल्ट बनता है, और अन्य 8 वर्ष कर्म भूमि नहीं भोग भूमि है, वहां अपने कर्मों का फल भोगते हैं लोग। तो अन्य 8 वर्ष कर्म भूमि नहीं है, भारत वर्ष कर्म भूमि है। तो भारत वर्ष में श्री भगवान नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान है, और ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद इनकी उपासना समस्त भारतवासियों के साथ करते हैं। भारत वर्ष का वर्णन आगे 19वें अध्याय में आएगा, किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष का वर्णन। तो भगवान सबके द्वारा आराध्य हैं, सर्वाराध्य हैं, यह बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी यह ब्रह्मांड का वर्णन और दीप वर्षों का वर्णन प्रारंभ किए हैं। तो किम पुरुष वर्ष में जहां ये सदैव एक प्रश्न बना रहता है कि वहां के लोग क्या पुरुष हैं, किम पुरुष है, क्या मनुष्य हैं, मनुष्य जैसा दिखते हैं लेकिन वो बंदरों का समाज है, तो लेकिन दिखते हैं मनुष्य जैसा, तो उनके अनुसार वर्ष का नाम हो गया किम पुरुष। और वहां के अध्यक्ष श्री हनुमान जी हैं, और भगवान सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि की आराधना करते हैं। तो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी अपने अनुचरों के साथ भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, और हरि वर्ष में आराध्य है भगवान नृसिंहदेव, और वहां प्रहलाद महाराज अपने परिकरों के साथ श्री नृसिंहदेव की आराधना करते हैं। और रम्यक वर्ष जहां जिसका वर्णन हो रहा है वहां के आराध्य है मत्स्यदेव, और इनकी आराधना वैवस्वत मनु करते हैं, सूर्य पुत्र विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु। और मत्स्यदेव संपूर्ण ब्रह्मांड के नियामक निर्देशक हैं, यहां तक कि इस ब्रह्मांड के प्राइम मिनिस्टर इंद्र को भी निर्देश देते हैं। इस ब्रह्मांड की जो रचना हुई है इसमें भी मिनिस्ट्री है, 6 फैकल्टी है, अष्टम स्कंद में वर्णन है। ब्रह्मांड को चलाने के लिए 6 विशिष्ट लोग चलाते हैं, सबसे ऊपर मनु महाराज जो कार्यरत उस रूप में नहीं है, वो राष्ट्रपति की तरह है, और कुछ विशिष्ट व्यक्ति मनु पुत्र होते हैं जो मनु महाराज की सहायता करते हैं, दूसरा विभाग है मनु पुत्र, और तीसरा इंद्र जो मुख्य शासक है, चौथा इंद्र के सहायक देवतागण उनको फैकल्टी बांट देते हैं अलग अलग, और पांचवा मनवंतरावतार भगवान, और छठवा धर्मरक्षक सप्तर्षिगण। ये 6 विभाग है और यही ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो इंद्र भी भगवान मत्स्यावतार मत्स्यदेव से निर्देश प्राप्त करते हैं। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्यदेव आराध्य हैं, इनकी आराधना वैवस्वत मनु करते हैं। हिरणमय वर्ष में कश्यप देव आराध्य हैं, और इनकी आराधना अर्यमा पितरों के साथ करते हैं, इसका वर्णन हो चुका है इधर। और कुरु वर्ष में भगवान वराह देव शुकर देव आराध्य हैं, और इनकी आराधना पृथ्वी देवी अपने समाज के साथ करती है। और भद्रास वर्ष में भगवान हयग्रीव आराध्य हैं, और इनकी आराधना भद्रश्रवा अपने अनुचरों के साथ करते हैं। और केतु माल वर्ष में भगवान ऋषिकेश कामदेव के रूप में रहते हैं और उनकी आराधना समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी अपने अनुचरियों के साथ करती हैं। भगवान कामदेव ऋषिकेश की आराधना। और इलावृत वर्ष के आराध्य हैं भगवान शंकरसर और इनकी आराधना भगवान शिव अपने अनुचरों के साथ। अनुचर वहाँ नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वो भवानी की अनुचरियाँ हैं। भगवान शिव उस वर्ष को एक रिजर्वेशन के अंदर रख दिए हैं इलावृत क्षेत्र को। वहाँ भगवान शिव रहते थे और उनके रहने पर कोई भी ऋषि मुनि साधु संत कभी भी आ जाया करते थे। तो भवानी को, पार्वती को थोड़ा दिक्कत महसूस होता था। किसी भी अवस्था में कभी कोई आ जाता है, कोई घर मकान तो बनाए नहीं थे, पेड़ के नीचे रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस करने लगी। तो कहे जाओ अब यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा, अगर कोई इस क्षेत्र में आने का प्रयास किया तो स्त्री हो जाएगा। विचित्र विचित्र देवताओं की भी अपनी इच्छा है, इसलिए इलावृत क्षेत्र में कोई पुरुष नहीं है, केवल भगवान शिव ही पुरुष वहाँ है। तो वहाँ भगवान शिव, भगवान शंकरसर की आराधना भवानी के अनुचरियों के साथ करते हैं। तो हम लोगों का जो प्रसंग है वो रम्यक वर्ष का है। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्यदेव आराध्य हैं। इसके पहले भी दो श्लोकों में स्तुति की जा चुकी है, जो वैवस्वत मनु भगवान मत्स्यदेव की आराधना करते हैं। तो यहाँ ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राण औजसे सहसे बलाय महामत्साय नमः इति, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप, देखिए स्तुति बहुत सावधानी पूर्वक किया गया है। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है कि तमह प्रकृति प्रधान, बिल्कुल बंधन युक्त, कर्मग्रस्त, साधारण जीव की तरह कर्म बंधन में पड़े हुए भगवान मत्स्यदेव मछली के रूप में क्यों अवतार लिए? इनके अवतार का क्या कारण है? ऐसा अवतार क्यों लिए? स्वच्छंद परम स्वतंत्र ईश्वर जो किसी के बंधन में नहीं रह सकते, वह भगवान तमह प्रकृति को क्यों स्वीकार किए? कर्मग्रस्त, कर्माधीन जीव की भांति एक मछली, साधारण मछली के रूप में क्यों अवतार लिए? यह प्रश्न है। लेकिन यहाँ स्तुति में कहते हैं कि जो सत्वाय प्राण ओजसे सहसे बलाय महामत्साय नमयति, जो पूर्ण सत्व में है, तमोगुण में नहीं है, वो मत्स्य रूप में आए। तो भगवान मत्स्य के रूप में क्यों आए, यह प्रश्न है महाराज परीक्षित का। अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय 24वें अध्याय में महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है कि कर्माधीन जीव की तरह कर्म बंधन को स्वीकार भगवान क्यों किए, क्या मजबूरी थी? जो परम स्वच्छंद है, परम स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता, वे एक पराधीन जीव की तरह कंडीशन है कि बिना जल के जी नहीं सकती मछली, ऐसा जीवन क्यों स्वीकार किया, ऐसा शरीर भगवान क्यों लिए? तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि देखो यह अवतार स्पेशल अवतार है, गाय वेद ब्राह्मण साधु की रक्षा के लिए प्रायः भगवान आते हैं, उनके आने का एक जनरल कारण है। तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई थी इसलिए भगवान आ गए, एक साधारण उत्तर। फिर कहते हैं कि भगवान एक विशिष्ट बात बताना चाहते हैं इस जगत में कि ऊंच नीच चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने शरीर हैं, चाहे उत्तम कोटि के देवता का शरीर हो, चाहे निकृष्ट जीव जंतु का शरीर हो, मछली का ही शरीर क्यों न हो, सबके अंदर हवा की तरह, वायु की तरह सर्वव्यापक भगवान है। हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सभी जीवों के अंदर हैं, फिर भी वे निर्गुण हैं, कर्म बंधन में नहीं है, प्रकृति के गुण उन पर हावी नहीं है। इस बात को स्थापित करने के लिए भगवान ने मछली का शरीर स्वीकार किया, एक दूसरा कारण। और तीसरा कारण है कि भगवान का यह लीला अवतार है। अवतार के जो 6 डिवीजन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण लीला अवतार है, पुरुषावतार, गुणावतार, जुगावतार, मनवंतरावतार, शक्त्यावेशावतार और लीलावतार। अवतार के 6 प्रकार हैं। तो उसमें लीलावतार भगवान के निज इच्छा से संभव होता है, कोई कंडीशन या कोई परिस्थिति से लीलावतार नहीं होता। इसमें भगवान स्वयं, जब गोलोक बिहारी, वैकुंठ बिहारी भगवान जब स्वच्छंद अपनी इच्छा से प्राकृत जगत में कुछ विशिष्ट लीला करना चाहते हैं तब आते हैं। तो ये मत्स्यावतार लीलावतार है। भगवान की एक स्वच्छंद इच्छा हुई कि मछली के रूप में कुछ दिन विहार किया जाए अपने भक्त के साथ, नौका विहार, तो भगवान मत्स्य रूप में आए। तो इस तरह से उनके अवतार के कुछ मुख्य बिंदुओं को बताकर फिर विस्तार से कथा करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान किस रूप में आए। तो वर्णन करते हैं कि एक द्रविड़ देश के राजा द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत महाराज एक बार कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते पूर्व कल्प की बात कही जा रही है। द्रविड़ेश्वर महाराज सत्यव्रत एक बार कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करके जब वो तर्पण करने लगे तो उस समय जल उठाए जब अपने अंजलि में, तो एक छोटा सा मछली बार बार उनके हाथ में आ जाती थी। तो उसको गिरा करके फिर जल लेते तो फिर आ जाती, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो हर बार उसको फेंक कर तर्पण दे रहे थे। भगवान सूर्य के संध्या वंदन कर रहे थे, जल दे रहे थे। तो जल देने के लिए जैसे ही पानी उठाते थे वो मछली आ जाती, तो उसको किनारे फेंक कर फिर दूसरा जल उठाते फिर आ जाती। बार बार आने के बाद थोड़ा सा परेशानी अनुभव करने लगे कि क्या बात है। तो सत्यव्रत महाराज थोड़ा सा जिज्ञासु मूड में थे, जिज्ञासा के मूड में थे। तब तक वह छोटी सी मछली बोल उठी कि हे राजन, आप क्यों हमारी उपेक्षा कर रहे हैं? हमको बड़े जलचरों से भय है, यहाँ प्रायः बड़ा जलचर छोटे जलचर को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। हम भयभीत होकर आपके शरण लिए हैं और आप हमारी रक्षा कीजिए। तो कोई विशेष ध्यान नहीं दिए, उठाकर अपने कमंडल में रख दिए, ज्यादा नहीं सोचे। चलो भाई, प्रार्थना कर रही है तो राजा का काम है रक्षा करना। लेकिन वो साधारण राजा नहीं थे, मुनि थे, सत्यव्रत मुनि भी उनको कहते हैं, राजर्षि भी थे। तो फिर कमंडल उठाए और लेकर चले आए, सोचे कि चलो ये बड़ा नदी है, इसमें भयभीत है, तो अपने आश्रम के पास एक छोटा सरोवर है उसमें डाल देंगे बाद में। तो लेकर गए और कुछ वहां संध्या वंदन आदि भजन काम में लगे, तब तक उनके कमंडल में वो मछली बढ़ गई। तो अचानक राजा की दृष्टि पड़ी कमंडल के तरफ, तो मछली ही बोल उठी, हे राजन, यह जगह मेरे लिए कम पड़ रहा है, थोड़ा सा बड़ा जगह की व्यवस्था कीजिए। तो अच्छा, तो एक पानी का टब था उसमें जाकर डाल दिए। सोचे कि इतना जल्दी बढ़ रही है, ज्यादा विचार नहीं किए। इसके बाद थोड़े ही देर में वो टब में भी पूरा भर गई। कही, राजन ये मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तो कही, इतना जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो सरोवर में डाल दिए, जो उनके पास एक छोटा सा तालाब था उसमें डाल दिए। और कुछ ही देर में वो पूरा सरोवर में भी बहुत बड़ा पूरा सरोवर को घेर ली। कहते, राजन यह जगह मेरे लिए कम पड़ रहा है। तब सत्यव्रत महाराज कहते हैं कि मत्स्य रूप में प्रकट होकर मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं, पहले आईडी बताइए। अपना परिचय बताइए, आप साधारण मछली नहीं है, निश्चय ही साक्षात श्री भगवान है, समझ गए। और इस किस अभिप्राय से आप मत्स्य शरीर प्राप्त किए हैं, आपका क्या योजना है, आप खाए कौन और इस रूप में क्यों आए हैं, आपकी क्या योजना है, एकदम सत्यव्रत महाराज समझ गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। तब भगवान उसी रूप में, दूसरा रूप नहीं धारण किए, उसी मछली रूप में ही भगवान अपना आगामी प्रोग्राम बताए। हे राजन, आज के सातवें दिन पूरा पृथ्वी प्रलय जल में आप्लुत हो जाएगी, डूब जाएगी, सारा जगत प्रलय के जल में डूबेगा, प्रलय होने वाला है। इसलिए आप सात दिन टाइम है, जो बीज रूप है उनको संग्रह कीजिए, और जो साधु स्वभाव के साधु प्रकृति के महात्मा हैं, संत ऋषि हैं, उनको भी बुला लीजिए। और जब पानी से सारा पृथ्वी डूबने लगेगी तो उसी समय आपके पास एक नौका आएगा, बहुत बड़ा नौका, नौका साधारण नहीं, एक नगर राज्य जैसा नौका होगा, बहुत बड़ा। तो उसमें आप सभी सामान को सबको रख दीजिएगा और सारे ऋषि मुनियों को उस पर बिठाइएगा। इसके बाद मैं आऊंगा इसी रूप में, मछली के रूप में ही, और मेरे शरीर पर, मेरे सिर पर एक सिंह होगा, और उसमें आप उस नौका को बांध दीजिएगा बासुकी नाग की सहायता से, और फिर हम और आप मेरे भक्त और मैं भगवान दोनों नौका विहार करेंगे। कब तक? जब तक प्रलय काल रहेगा तब तक, पूरी रात्रि, ब्रह्मा के एक रात्रि तक प्रलय रहेगा, उसमें हम लोग नौका विहार करेंगे, फिर मिलेंगे सात दिन के बाद। यह कहकर भगवान निर्देश देकर आगामी प्रोग्राम बताकर चले गए। तो प्रिय व्रत महाराज, सत्यव्रत महाराज की एक जिम्मेवारी आई और भगवान के निर्देश के अनुसार उन्होंने सारी व्यवस्था किया, और फिर महाप्रलय के जल में नौका आया, सब कुछ व्यवस्थित किए, और फिर नौका विहार के क्रम में महाराज सत्यव्रत भगवान को गुरु के रूप में आराधना किए हैं। हे जगत गुरु, आठ श्लोकों में हमारे आचार्य चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गुरुअष्टक है, असली गुरुअष्टक यही है। इसमें गुरु की परिभाषा बतलाए हैं कि हे प्रभु, आप ही जगत गुरु हैं, आप एक एक जीवों के हित करने वाले हैं, हितैषी हैं, परम स्नेही हैं, सुहृद हैं, जगत के कल्याण के लिए आपने ऐसी योजना बनाई, आप वास्तव में जगत गुरु हैं। इस रहस्य को नहीं जानने वाले मूर्ख लोग साधारण लोगों का शरण लेते हैं, उनके लिए भवसागर बहुत कठिन हो जाता है, जैसे कोई कुत्ता का पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहे वैसा। ऐसे अज्ञ लोग जो कुछ भी नहीं जानते, वे अपने को गुरु या भगवान तक कह बैठते हैं, लेकिन हे नाथ, आप ही वास्तव में गुरु हैं, आपके जगत के हितैषी हैं, और हूबहू जो आपका फॉलो करता है वह आपके विषय में बता सकता है। आपकी परंपरा में आने वाले गुरु ही, जो प्रमाणिक गुरु हैं, वो आपका बोध करा सकते हैं। बड़ा सुंदर श्लोकों में वर्णन करते हैं सत्यव्रत महाराज। तो वही सत्यव्रत महाराज आने वाले मनवंतर में सूर्य पुत्र श्राद्ध देव के रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत महाराज श्राद्ध देव उनका व्यक्तिगत नाम था, लेकिन अपत्यवाचक नाम वैवस्वत मनु है, विवस्वान के पुत्र होने के कारण ये अपत्यवाचक नाम है वैवस्वत। जैसे पिता के नाम से पुत्र या पुत्री का नाम होता है, उसको अपत्यवाचक कहते हैं संस्कृत में, से जनक से जानकी, उसी प्रकार विवस्वान से वैवस्वत, जैसे स्वयंभू से स्वयंभू। तो स्वयं भगवान है और स्वयं से जो पुत्र हुए उसको स्वयंभू कहते हैं, ब्रह्मा, और स्वयंभू के जो पुत्र हुए उनको स्वयंभू, स्वयं स्वयंभू स्वयंभू, ये सब अपत्यवाचक नाम है। तो उसी प्रकार विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्वत मनु, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वर्तमान मनु है, इसलिए इनका नाम नहीं भूलना चाहिए। तथा कथित प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आदि का नाम याद करते हैं तो तुरंत बदल जाते हैं। इनको एक बार याद कर लीजिए, पूरा जीवन भर यही रहेंगे, चेंज होने वाले नहीं है। तो ये वर्तमान मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु परिवर्तित होते हैं, 14 मनवंतर बीतता है। तो क्रमशः 6 मनवंतर बीत गया है, 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। तो इस वैवस्वत मनवंतर के मनु है वैवस्वत मनु श्राद्धदेव। तो श्राद्धदेव यही वैवस्वत मनु भगवान की आराधना करते हैं मत्स्यदेव की। और आराधना करते हुए इस श्लोक में मुख्य रूप से कहते हैं कि भगवान जुगांता रणव उर्मि मालिनी छोणी मीमा मौषधि रुधाम निधिम मया सहोरु क्रमते जवोजसा तस्मय जगत प्राण गणात्मने नमः इति। हे नाथ, जुगांतारणव उर्मि मालिनी, जब युग का अंत हो रहा था उस समय, उस अरणव में, जुगांत के समय जो अरणव समुद्र उफना, सारा जगत डूब गया, उसमें उर्मि मालिनी लहराता हुआ लहरों के बीच आप आए रक्षा करने के लिए। छोड़ी मीमा मोषधि रुधाम निधिम, उस समय आपने इस पृथ्वी की रक्षा किया। छोड़ी पृथ्वी को कहते हैं, और पृथ्वी के बीज जो औषधि रूप में है, धान गेहूं जो बीज है जीवों के भोजन के सामग्री, उसको औषधि आदि, औषधि और औषधि दो है। औषधि जो डेली हम खाते हैं उसको कहते हैं, और औषधि कभी कभी रोग के समय जब यूज करते हैं उसको कहते हैं, रोग दूर करने के लिए। तो जितने औषधियां हैं जिनकी विरुधाम समस्त प्रकार के लता पेड़ पौधा के जितने बीज भंडार है, उसको उस आगार को उस संग्रह करने का शक्ति आदेश किए, और मया सह मेरे साथ इस पृथ्वी की रक्षा किए। और आपने मेरे साथ और क्या किया, मया सहोरु क्रमते जो ओजसा, अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से, अपने गति से आपने पूरे प्रलय जल में विहार किया। क्रमते है, क्रमता का मतलब घूमे, भ्रमण किए। तस्मय जगत प्राण गणात्मने नमः। हे जीवन के परम स्रोत, हे सबके जीवन के आधार, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो इस तरह श्री भगवान जगत के पालन करते हैं, इसका प्रैक्टिकल अनुभव वैवस्वत मनु को है। कभी कभी लोग ऐसे बेढंगा जिज्ञासा करते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी पूछ देते हैं। एक बार की घटना है, लास्ट ईयर मैं मायापुर से दुर्गापुर के दो तीन दिन का प्रोग्राम किया, 2 दिन रानीगंज। तो रानीगंज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक लड़का आया, और वो आकर जिज्ञासा करना चाहता था। तो जहां मैं रुका था उनसे कहा कि मैं स्वामी जी से अकेले मिलूंगा, जहां कोई नहीं रहेगा। तो आकर मुझसे कहा कि एक व्यक्ति आया है, आपसे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि जहां कोई नहीं रहेगा वहां मिलूंगा। मैं सोचा कि इसका कोई व्यक्तिगत समस्या होगी। तो बहुत सोचने के बाद मैं कहा ठीक है। तो मेरे साथ 2 ब्रह्मचारी और थे, उनको कहा ठीक है आप लोग बाहर जाइए, इसका जिज्ञासा सुनता हूं। तो कहा कि स्वामी जी, वो स्कान से संबंधित था, भगवत गीता सामने थी, उसको उठाकर हाथ में दिया और कहा कि आप भगवत गीता का कसम खाकर बोलिए कि आप भगवान को देखे हैं। मैं कहा यही तुम्हारी जिज्ञासा है? तो कहा हाँ, यही एक प्रश्न है बस, आप भगवान को देखे हैं? तो मुझसे सहसा निकल गया, हाँ, मैं गीता तो ले ही लिया, मैं सोचा कुछ इसमें से श्लोक पूछेगा इसलिए ले लिया। तो प्रश्न कर दिया, तो मैं कहा हाँ देखा हूं। तो फिर क्या पूछता है, देखिए मैं हंसी मजाक नहीं करता, सीरियसली पूछ रहा हूं। तो मैं कह रहा, आपको कैसे विश्वास होगा कि मैं देखा हूं? तो कहा जिस तरह से जयदेव जी देखे हैं, विद्यापति देखे हैं, बिल्लू मंगल ठाकुर देखे हैं, 3 लोगों का नाम लिया, वैसे आप देखे हैं? तो मैं कहा हाँ हाँ मैं वैसा ही देखा हूं। तो कहा कि लेकिन आप मुझे समझाइए कि आप कैसे देखे, मुझको भी समझ में आ जाए। तो मैं कहा कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं? तो कहा कि हाँ। और रेडियो पर भी कभी कभी कमेंट्री सुनते हैं? तो कहा हाँ। तो जिस तरह उस फील्ड में क्रिकेट देखकर जो कमेंटर है कमेंट्री करता है और रेडियो में उसके शब्द को सुनकर भी आप देखते हैं कि सचिन का गेंद बाउंड्री वाल से बाहर 4 रन, तो आप देखते हैं ना, लेकिन आंख से नहीं सुनकर। तो उसी प्रकार बिल्लू मंगल, जयदेव और विद्यापति जैसे कमेंटरों के मुख से हाथ से जो वर्णन है उस कमेंट्री को सुनकर पढ़कर हम देखते हैं, समझे? तो हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं है लेकिन उन कमेंटरों की कमेंट्री से देखते हैं। तो लेकिन था वास्तव में सीरियस, तुरंत हाथ जोड़ लिया, ठीक है। अब और कोई जिज्ञासा? नहीं नहीं, मैं संतुष्ट हुआ आपके उत्तर से। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग ईर्ष्यालु हैं, लोगों के मन में किसी के उन्नति से अमर्ष होता है, ईर्ष्या होता है और उस ईर्ष्या के कारण वो जलते हैं। तो वैसे ही सबसे ऐश्वर्यवान श्री भगवान हैं, उनके आश्चर्यजनक लीलाओं को सुनकर देखकर भी कुछ नास्तिक नहीं विश्वास करते और ईर्ष्या का ऐसे कैसे हो सकता है, अपनी बुद्धि लगाते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक ग्वालिन जो लोटा से दूध नापकर बेचती थी और ऐसे ही एक दिन कपड़ा के दुकान पर चली गई, तो दुकानदार से कही कुछ कपड़ा दे दो। तो कही कितना, कितना मीटर, कितना गज? अरे लोटा से, 2 लोटा दे दो। तो कहे माता जी इस लोटा से नहीं नापा जाएगा कपड़ा? तो कहती है जीवन भर दूध नाप दी, इस लोटा से कपड़ा नहीं नापा जाएगा? नहीं, अलग पैमाना होता है, ये मीटर से गज से नापा जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक उसी ग्वालिन की मानसिकता में इस संसार के लोग हैं, उनको दूसरे पैमाना कुछ पता ही नहीं है, अपनी बुद्धि जहां तक जाती है उसी को प्रमाण मान लेते हैं। और सत्य यह है कि अपनी इंद्रियां और इंद्रियों का फील्ड जहां तक है वो सब माया के वृत्ति है। गो गोचर जहां लग जाई तह सब माया जानहु भाई, जहां तक हमारी इंद्रियों का पकड़ है वो सब माया की प्रवृत्ति है। लेकिन भगवान माया के अधीन नहीं है, इसलिए इस इंद्रियों से समझ में नहीं आते, इसलिए उनको अधोक्षज भी कहते हैं, अध अक्षज, जिनको पकड़ने में हमारी इंद्रियां पीछे हो जाती हैं। तो भगवान इस ब्रह्मांड की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, किंतु इसको नास्तिक ईर्ष्यालु लोग नहीं समझते। भक्त लोग इसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं, वो जानते हैं भगवद गीता के एक एक शब्द पर विश्वास है। माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता इत्यादि। तो इस प्रकार प्रकृति के जो विस्मयकारी परिवर्तनशील आश्चर्यजनक घटना है वो भगवान की सृष्टि है, और वो भी डायरेक्ट सृष्टि नहीं, वो भगवान की बहिरंगा प्रकृति की रचना है। लेकिन बहिरंगा प्रकृति भी भगवान द्वारा शक्तिवती होती है तब सृष्टि करती है। इसलिए बड़े बड़े तथाकथित विद्वान लोग भी जो भगवान के समर्पित नहीं है, भगवान के भक्तों का शरण नहीं लेते, वे इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। और कम पढ़ा लिखा अशिक्षित व्यक्ति भी जो भगवान का शरण लिया भक्त है, वे इन क्रियाओं के पीछे भगवान का हाथ देखते हैं। उनको सहज विश्वास है भगवान की, जगत की सृष्टि भगवान की है, प्रभुपाद यह कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार सभी स्तुतियों में श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी स्तुतियां हैं, 23 स्तुति फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ छिटपुट भी कई स्तुतियां हैं। समस्त स्तुतियों में इस बात को निश्चित रूप से कहा गया है कि श्री भगवान आप जगत के श्रेष्ठा हैं, पालन करता है, संहार करता है। क्यों? एक ही बात भगवान से रिपीट करने की क्या जरूरत है, ताकि व्यक्ति को यह भ्रम न हो जाए कि हम करने वाले हैं। प्रत्येक भक्त यह अनुभव करते हैं, और जिसको अनुभव है, जिसको रियलाइजेशन है कि भगवान है और भगवान ही करते हैं, वो बिना कहे रह नहीं सकता, वो कहेगा ही। और जो इसका ज्ञान नहीं रखता वो भ्रम में भूल कर अपने को क्रिएटर कहता है, हम कुछ करते हैं, जितना करता है उसी को मानता है हम करते हैं, लेकिन किसी भी क्रिया के पीछे भगवान का हाथ है ये भक्त लोग जानते हैं। इसको बताना बहुत जरूरी है। जब आपस में एक स्त्री पुरुष के संबंध को पक्का है, संबंध के पति पत्नी है, फिर भी बार बार कहना पड़ता है आई लव यू, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या है? जब वास्तव में किसी में कोई प्रेम नहीं है, सब कामुकता के एक लस्ट पर आधारित है, फिर भी लव कहते हैं। और जो वास्तव में जगत के सृष्टा है, जगत के पालन करता है, परम सुहृद है, उनके सामने हे प्रभु आप जगत के सृष्टा है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके इस सौहार्द को मानता हूँ, आप मेरे पालक है, मेरे रक्षक है, तो यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है। यह बिना कहे व्यक्ति रह ही नहीं सकता, जिसको इस विषय में अनुभव है वो जरूर कहेगा। इसलिए हर स्तुतियों में भगवान की भगवत्ता युक्त ऐश्वर्य का वर्णन, ऐश्वर्य के गुणान वर्णन अवश्य किया जाता है। आप करने वाले हैं, आप करते हैं। तो यहाँ वैवस्वत मनु भी भगवान मत्स्यदेव से कहते हैं कि आप जगत के सृष्टा हैं, पालन करते हैं, उन प्रलयकाली तरंग लहरियों में भी आपने जगत को बचाया, पृथ्वी के बीज को बचाया, हमको बचाए, इसलिए हे पालन करता आप ही वास्तव में पालन करता है, आप ही सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, भगवान कहते हैं जानना पड़ेगा, और जानकार लोग जो जानते हैं वो अवश्य बोलेंगे। भगवान कहते हैं कि सारे लोगों का मालिक हूँ, सभी यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। तो इस बात को जानने वाले सुख शांति का अनुभव करते हैं, और जो वास्तव में कर चुके हैं वो जरूर बोलेंगे। इसलिए सारे स्तुतियों में इस बात को अवश्य कहा गया है कि भगवान जगत के पालन करता है, सुहृद है, प्रभु है, हम उनसे प्रेम करते हैं, हे नाथ अपने प्रेमा भक्ति मुझे प्रदान कीजिए, हम इस बात को भूल न सकें, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। यह प्रार्थना सभी भक्त करते हैं और करना चाहिए, स्वाभाविक है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा? थोड़ा निकट आकर बोलिए।
हरे कृष्ण गुरु जी, हम अभी चर्चा कर रहे हैं अलग अलग वर्षों में भगवान के अलग अलग रूप की उनके भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी हैं और दूसरे भक्त भगवान की आराधना करते हैं, और हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे रामायण की कथा हुई है, मतलब इस भारत वर्ष में, तो हनुमान जी और बहुत सारे ऐसे भक्त जो अलग अलग वर्षों में रह के भगवान की आराधना करते हैं, तो कैसे समझा जाए इसको कि वो इस वर्ष पे भी आते हैं, मतलब?
हाँ, तो जो उनका अपना निजी निवास है, इसका मतलब कि वहाँ वो अरेस्ट थोड़े हैं, वो जहाँ इच्छा जाएंगे। हनुमान जी यहाँ भी हैं, भगवान के धाम साकेत में भी हैं, और किम पुरुष वर्ष में भी हैं, सब जगह जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी है कि किम पुरुष में है तो बस अब कहीं नहीं जाना है, वहीं रहना है, वो सब जगह रहते हैं। बल्कि रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि जब भगवान साकेत वासियों को, अयोध्या वासियों को जब अपने निज धाम ले जाने लगे तो सब लोग उत्सुक थे जाने के लिए, राम राज्य का सुख भोग चुके थे, उनको ऐसा लग रहा था कि इनके जाने के बाद महादुख आ जाएगा, सब जाने के लिए तैयार हो गए, सबको भेजा गया, लेकिन हनुमान जी नहीं तैयार हो रहे थे। स्वयं भगवान राम पूछे, हनुमान चलना चाहिए ना, नहीं प्रभु आप जाइए, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी कथा यहाँ मिलेगी। भारतवर्ष में कथा की बड़ी व्यवस्था है, इसलिए भारतवर्ष के वर्णन में अभी 19वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि वह स्थान रहने लायक नहीं है, चाहे वह सुरेश लोकोपी, सुरेश लोक देवताओं का लोक क्यों न हो, वह सभ्यतम न सभ्यतम नहीं रहने लायक है। क्यों? कि वहां भगवान की कथाएं नहीं होती है, जहां भगवान की लीला कथा यज्ञ महोत्सव नहीं होता, वह जगह रहने लायक नहीं है। अभी भारतवर्ष की यह विशेषता है कि यहाँ यज्ञ, यहाँ महोत्सव, यहाँ कथाएं होती रहती हैं। तो इस लोभ से हनुमान जी यहाँ रहना चाह रहे थे कि हम आपकी कथा सुनेंगे। आप भागवत महात्म में एक श्लोक सुने होंगे, सुखदेव गोस्वामी के मुख से है कि यह भागवत अन्य लोकों में नहीं है, कहे न ये शिवलोक में है, वैकुंठ लोक में भी नाति अयम रस, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचति कर ही चेत। न यह रस भागवत का रस ब्रह्मलोक में है, सत्यलोक में है, न शिवलोक में है और न देवलोक में, इंद्रलोक में है। यह रस तो इसी भारत में है, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचति कर ही चेत। इसलिए हे सौभाग्यशाली जनो, इस रस को मत छोड़ो। सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है। तो इस रस के लोभ से हनुमान जी भारतवर्ष में भी आते हैं, अपना निजी निवास किंग पुरुष वर्ष में भी रहते हैं और भगवान के साथ वहां भी रहते हैं। भगवान उनको विशेष आशीर्वाद भी दिए, ठीक है हनुमान तुमने यह भी मांगा है कि मैं अपने आपके चरणों का सान्निध्य नहीं छोड़ना चाहता, आपके चरणों की सेवा चाहता हूं, तो तुम मेरे साथ भी चलो, यहां भी रहो। तो भगवान की कृपा से हनुमान जगह जगह रहते हैं, देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में भी रहते हैं, भारतवर्ष में भी रहते हैं। भारतवर्ष उनका निवास नहीं है नारद जी का, लेकिन उनकी पूजा स्थली है, मंदिर है, इसलिए आते हैं, यहाँ रहते हैं, बद्रिक आश्रम में नर नारायण की उपासना करते हैं। तो ये लोग बहुत उन्नत हैं, इन लोगों की हम लोगों से तुलना नहीं की जा सकती, सब जगह रहते हैं।
सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को, भगवान सप्तर्षि, पेड़, जड़ी बूटियों और उनके साथ पृथ्वी को भी सुरक्षा दिए बोलने। तो पृथ्वी वो टाइम में तो प्लावित हो गया था जल में, तो पृथ्वी को जो सुरक्षा दिए कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? और नौका में बैठाए थे, पृथ्वी को भी डाले थे?
नहीं नहीं, पृथ्वी की रक्षा का मतलब पृथ्वी में जो भी बीज रूप में है, जिस पृथ्वी के जो भी पेड़ पौधा जीव जंतु जिसे पृथ्वी का श्रृंगार है, उन बीज रूप में पृथ्वी को धारण किए थे, जो सत्यव्रत महाराज को आदेश किए कि आप उस बीज को लेकर के नौका में बैठिए। तो पूरे पृथ्वी का अर्थ भागवत में अनेकों ढंग से है, पूरे ब्रह्मांड को भी पृथ्वी कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड, और उसमें भी एक छोटा सा पार्ट भी पृथ्वी है, एक लोक, जैसे 14 भुवन है ब्रह्मांड में, ऊपर 6 लोक और पृथ्वी से नीचे 7 लोक, पृथ्वी से ऊपर स्व स्वर्ग लोक, जल लोक, तप लोक, महर लोक, सतलोक इत्यादि, और नीचे तल, तलातल, अतल, बीतल, सुतल, पाताल इति नीचे। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी पृथ्वी कभी कभी कह देते हैं, जैसे कभी कभी भारतवर्ष एक हिमालय और हिंद महासागर के बीच के पार्ट को भी भारत कहते हैं, या कभी कभी भारत का वर्णन संपूर्ण पृथ्वी के रूप में किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के बीज रूप, जो औषधियां हैं, पेड़ पौधा लता, या जो ऋषि मुनि हैं उनको ही पृथ्वी के रूप में कहा। पृथ्वी की रक्षा किए मतलब आपने इन औषधियों के रूप में, इन बीज के रूप में इस पृथ्वी की रक्षा किए, यह कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि नदी, पहाड़, हिमालय सब जल जलमग्न था, उसको एकदम पूरा पूरा रख नहीं दिए नौका पर, बीज रूप में रखे।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
कौन?
आपने बहुत ही शालीन शब्दों में आध्यात्मिक भूगोल और देवताओं के वंशावली का वर्णन किया है, और लेकिन प्रभु जी इस जो आध्यात्मिक भूगोल का आपने वर्णन किया, आज के आधुनिक भूगोल से इसका सामंजस्य बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज की आधुनिक शिक्षा जो है उसमें और तब के आध्यात्मिक चीजों में जो वर्णन हुआ है पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, आज आधुनिक विज्ञान जो आज के बच्चे और हम लोगों ने जो पढ़ा है और रोज देखते हैं कि आज हम चांद पे, मंगल पे पहुंच करके वहां टॉयलेट करके आ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, तो अब वो सब चीजें बड़ा स्वप्न जैसा लगता है जो वर्णन हुआ है भागवतम में। और आपसे मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि आपने एक उदाहरण दिया वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, जिसने एक बड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछा कि आपने भगवान को देखा है और आपने अपने प्रखर बुद्धि का परिचय देते हुए बहुत ही अच्छा जवाब दिया, कोई भी संतुष्ट हो जाएगा इस जवाब से, और इससे एक और शिक्षा यहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं और कथावाचक है या वक्ता हैं उनको भी लेना चाहिए कि कोई अगर आड़ा टेढ़ा प्रश्न आज संसारी लोग करते हैं तो उसका मनन करना चाहिए, उससे चिढ़ना भी नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसका अनुभव है कि कभी जब लीक से हटके प्रश्न किया जाता है तो अक्सर लोग उससे बचते हैं या चिढ़ते हैं या प्रवचन खत्म होने के बाद चार जन घेरे लेते हैं कि आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया। मेरा कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से साबित होता है कि हर प्रश्न का उत्तर होता है, बस उसे मनन करने और प्रखरता से उसके बारे में सोचना और उसके बारे में कहना और उसे प्रकट करने की आपके अंदर जागृति होनी चाहिए। तो पहला तो ये तो एक कमेंट हुआ, लेकिन वो प्रभु जी ये बताइए कि वो भूगोल का जो आपने मैंने जो जिज्ञासा करी है कि पहले का भूगोल और अभी का भूगोल में क्या सामंजस्य है। हरे कृष्ण।
नहीं, भूगोल तो भूगोल है, आधुनिक और प्राचीन नहीं है, लेकिन हम अपनी क्षमता के अनुसार भूगोल का अध्ययन करते हैं। और ये लोग जो वर्णन किए हैं सुखदेव गोस्वामी आदि, वो अपने समझ से उनका विस्तृत भूगोल है, विस्तार से हमारा पहुंच ही नहीं है। आप तो चंद्रमा पर जाने की बात करते हैं लेकिन श्रील प्रभुपाद इस बात को नहीं स्वीकार करते कि चंद्रमा पर और सूर्य पर जो उन ग्रहों पर लोग जाते हैं, चले गए हैं, यह एक काल्पनिक बात है। जहां बहुत दूरी है और बहुत तेज विमान की जरूरत है, लेकिन लोग कहते हैं वही लोटा वाला हिसाब है, अपनी बुद्धि के अनुसार लोग सबको देख लेते हैं। लेकिन यहां इस भूगोल का तात्पर्य भूगोल के ऊंचाई निचाई, पहाड़, पर्वत, नदी, पैमाना नहीं है, यह मैं शुरू में ही कहा। इस भूगोल का अर्थ इसको इंच फीट में नाप कर हूबहू इसका पैमाना बताना उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि भगवान श्री हरि सर्वाराध्य हैं, सब जगह इनकी आराधना की जाती है, ये हाईलाइट किया गया है इसमें। किसी भी व्यक्ति को इस चक्कर में से हटकर, यहां तक श्रीपाद जीव गोस्वामी दशम स्कंद के ब्रह्मा जी के स्तुति के तीसरे श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, स्थाने स्थिता स्तुतिगतम तनुआ मनो भी, अपने स्थान में स्थित होकर मन वाणी से विनम्र होकर सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम साधु पुरुषों के मुख से निकली हुई कथा सुननी चाहिए, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इसके टीका में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय माने कृष्ण लीला परक वार्ता, आपकी कृष्ण की स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो कृष्ण की जो ब्रज लीला है, गोपों के साथ जो व्यवहार है, गोपियों के साथ व्यवहार है, गोवर्धन धारण आदि जो लीला है, इन लीलाओं में ही रमना चाहिए, इसको हाईलाइट करने के लिए जीव गोस्वामी ने यहां तक कह दिया कि सृष्टि विषयक, सृष्टि कैसे हुई, किन तत्वों से हुई, या भौगोलिक वर्णन, या ब्रह्मांड का अन्य वर्णन, या अन्य कथाओं के चक्कर को दूर से छोड़कर उसके उस विषय को जानने की कोई जिज्ञासा न रखते हुए भगवान की लीलाओं में और भगवान के भक्तों के साथ जो सौहार्दपूर्ण लीला है इसी में रमना चाहिए, यह भवदीय वार्ताम का व्याख्या करते हैं। तो लोग उलझ जाते हैं उधर, आखिर जीव गोस्वामी को क्यों कहना पड़ा जो एक बहुत बड़े प्रमाणिक विद्वान है। तो इसलिए कह दिए कि लोग उन विषयों में उलझ जाएंगे और जो सुखमय, जो रहस्यमय, माधुर्यमय लीला है उसके पास नहीं आ पाएंगे। कुछ लोग, एक बार बहुत पहले की बात है, जब मैं बनारस में पढ़ता था तो भक्ति रूप भागवत महाराज या कोई गौड़ीय आचार्य थे, अब शायद नहीं है, स्वरूपगंज में और बनारस में कई जगह उनका मंदिर है, तो वे प्रभुपाद के विषय में कुछ बोलने लगे। एक बार वो आए थे उनके पास, मैं बैठा था, तो बोलते बोलते कुछ निंदात्मक बात कहने लगे। जो उनका कहना था कि प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी हमारे गुरु महाराज का टाइटल स्वीकार कर लिए। मैं भी उस समय विद्यार्थी था, लेकिन मेरे विनम्रता युक्त उत्तर से वो संतुष्ट हुए। मैंने कहा कि यह प्रभुपाद टाइटल जहां तक मैं समझा हूं, यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए स्पेशल नहीं है, यह आदरवाचक टाइटल है। आपके ही गौड़ीय प्रकाशन में मैं आपको दिखा सकता हूं, इसी आपके ही मंदिर से प्रकाशित पुस्तक में रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जीव गोस्वामी प्रभुपाद। तो यदि यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए स्पेशल होता तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद नहीं कहा जाता। श्लोक भी दिखा दूंगा आपको। तो थोड़ा चुप हुए। तो कोई भी शिष्य अपने गुरु के लिए आदरवाचक प्रभुपाद टाइटल दे सकता है, ये अन्यथा नहीं है। और एक उनका कमेंट था कि इन्होंने संकीर्णता में रख दिया भक्तों को कि हमारे अतिरिक्त तो दूसरा ग्रंथ न पढ़े, हमारा ग्रंथ परफेक्ट है, और भी ग्रंथ है जो आचार्यों का है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। और कदाचित प्रभुपाद ऐसा बोले भी होंगे तो ये भी परम आवश्यक है, क्योंकि विदेशी मानसिकता के लोग जब यहाँ जिज्ञासा के मूड में घूमने लगते हैं तो यहाँ आकर बहक जाते हैं। विदेश से आने वाले लोग आपके इसी बनारस में गांजा पीते हुए मैं आपको दिखा सकता हूँ। इंग्लैंड अमेरिका के लोग गांजा पीते हैं, दाढ़ी बढ़ाकर साधु वेश में रहते हैं, तो भटकने की संभावना है। इसलिए प्रभुपाद ने परफेक्ट टिप्पणी दिया है, इसको पढ़ने को कहा है। तो इसी तरह अगर कहीं यह कहा गया कि आप केवल अगर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के लीला परक लीलाओं को ही सुनना चाहिए, जीव गोस्वामी का कमेंट्री है, तो उसमें भी उनका रहस्य है कि लोग भटके ना, पढ़ पढ़ कर ज्यादा लोग प्रभुपाद को तो बड़े आक्रोश मूड में बोलते हैं, डिग्री धारी राक्षसों की बात क्या कहो, कई जगह कहते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़कर राक्षस हो जाते हैं, भगवान के रहस्य को समझते नहीं। तो इतने भूगोल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कैसे बना, क्यों बना, क्या हुआ, बल्कि भगवान के माधुर्य युक्त वर ब्रज के लीलाओं में ही रमना चाहिए, और इससे सहज भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो कोशिश किया जाता है कि अल्प मेधा अल्प टाइम में, कलयुग में बहुत सारी चीजों का तो हम परफेक्ट अध्ययन कर भी नहीं सकते, तो इसलिए हमारे आचार्यों का निर्देश है कि इस चक्कर में न पढ़कर सीधा भगवान से संपर्क करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, उनकी लीला कथा सुनना चाहिए। तो हमने जो इस भूगोल की चर्चा किया उसके भूमिका में ही प्रारंभ में कहा कि हरि सर्वत्र सर्वदा आराध्य है, सर्वाराध्य है, यह इस भूगोल का तात्पर्य है। न कि मॉडर्न और प्राचीन भूगोल की तुलना नहीं किया गया है, जो जिसकी जैसी समझ वैसा अध्ययन करे, लेकिन अध्ययन मुख्य यह है कि भगवान की आराधना परमावश्यक है। हरे कृष्ण, जय श्री राम।